ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंध अध्याय क्रमांक एक, जिसका शीर्षक है महाराज प्रियव्रत का चरित्र, श्लोक क्रमांक 36। ये श्लोक मीटर में नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट है उसको गाना एक रिदम से, तो मैं पढ़ूंगा और फिर हम शब्दार्थ और अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे, क्योंकि गा नहीं सकते इसलिए रिपीट करने में भी मुश्किल हो जाएगी, तो सिर्फ मैं पढ़ता हूँ इसे। स एवं परिमित बल पराक्रम एकदा तु देवर्षि चरणा अनुशयानुपतित गुण विसर्ग संसर्गेना निवृत्तम इवात्मनम मन्यमान आत्म निर्वेद इदमाह। इसका शब्दार्थ कृपया मेरे साथ दोहराइएगा। स वह महाराज प्रियव्रत एवं इस प्रकार अपरिमित अद्वितीय बल शक्ति पराक्रम जिसका प्रभाव एकदा एक बार तू तब देवऋषि महामुनि नारद के चरण अनुशयन चरण कमलों में समर्पण अनु तत्पश्चात पतित गिरा हुआ गुण विसर्ग विषयों के तीन गुणों से उत्पन्न संसर्गेन संपर्क होने से अनिर्वृतम असंतुष्ट इव सदृश आत्मानम अपने आप को मन्यमानः इस प्रकार सोचते हुए आत्म स्वयं निर्वेदः त्यागमय इदं यः आह कहा। अनुवाद और तात्पर्य शिलाभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की अनुवाद। इस प्रकार अपने पूर्ण पराक्रम तथा प्रभाव से भौतिक ऐश्वर्य का भोग करते हुए महाराज प्रियव्रत एक बार यह सोचने लगे कि यद्यपि मैं महामुनि नारद के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुका था और वास्तव में कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर था, किंतु मैं अब न जाने क्यों फिर से भौतिक कार्यों के बंधन में फंस गया हूँ। इस प्रकार उनका मन अशांत हो उठा, वे विरक्त होकर बोलने लगे। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद पांचवे अध्याय 17वें श्लोक में कहा गया है, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्भुजं हरे भजन पक्वो तपते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किं को वार्थ आप्तो अभजतां स्वधर्मतः। जिसने ईश्वर की सेवा करने के लिए अपना भौतिक कर्म छोड़ दिया है, वह अपरिपक्व अवस्था में रहने पर कभी कभी गिर सकता है, किंतु तो भी उसके असफल होने का कोई डर नहीं रहता। दूसरी ओर यदि कोई अभक्त अपने वृत्ति परक कर्तव्यों में पूरी तरह संलग्न रहे तो भी उसे कुछ नहीं प्राप्त होता। यदि कोई किसी भी तरह किसी महान वैष्णव की शरण में जाता है और भावनावश या बोध होने के कारण कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है, किंतु कालांतर में अपरिपक्व बोध के कारण यदि वह नीचे गिर जाता है तो वह वास्तव में गिरा हुआ नहीं कहा जाता, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में लगे रहना एक प्रकार से स्थायी संपत्ति है। अतः यदि कोई नीचे गिरता है भी तो कुछ काल के लिए उसकी उन्नति रुक सकती है, किंतु उपयुक्त अवसर आने पर वह फिर अवश्य दिखाई पड़ेगी। यद्यपि महाराज प्रियव्रत नारद मुनि के उपदेशों के अनुसार भगवान के धाम वापस जाने के लिए सेवा कर रहे थे, किंतु अपने पिता की प्रार्थना पर वे भौतिक विषयों में पुनः लौट आए। कालांतर में उनमें अपने गुरु नारद के अनुग्रह से श्री कृष्ण की सेवा करने की भावना पुनः जगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, कालांतर में उनमें अपने गुरु नारद के अनुग्रह से श्री कृष्ण की सेवा करने की भावना पुनः जगी। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जैसा कि भगवद गीता 6:41 में कहा गया है, शुचीनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो अभिजायते। भक्ति योग से च्युत पुरुष को पुनः देवताओं का ऐश्वर्य प्राप्त होता है और उसका उपभोग कर लेने के पश्चात उसे शुद्ध ब्राह्मण अथवा धनी परिवार में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे वह अपनी कृष्ण भक्ति को पुनः जागृत कर सके। प्रियव्रत के जीवन में ऐसा ही हुआ, इस सत्य के वे ज्वलंत उदाहरण है। कालक्रम से जब उन्हें अपनी संपत्ति, पत्नी, राज्य तथा पुत्रों के भोग की कामना नहीं रह गई तो उन्होंने सबको त्याग देना चाहा। अतः इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज प्रियव्रत के ऐश्वर्य का वर्णन कर चुकने के बाद उनकी विराग प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं। देवर्षि चरणानुशयन शब्दों से यह सूचित होता है कि महाराज प्रियव्रत पूर्णतया देवर्षि नारद की शरण में जाकर उनके निर्देश से भक्ति की समस्त क्रियाओं तथा अनुष्ठानों का कठोरता से पालन कर रहे थे। जहाँ तक अनुष्ठानों के दृढ़ता पूर्वक पालन का प्रश्न है, उसके संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है, दंडवत प्रणामास्तान अनुपतितः, गुरु को तुरंत दंडवत प्रणाम करने तथा उसके आदेशों का पालन करने से विद्यार्थी उन्नति करता है। महाराज प्रियव्रत ये सारे कार्य नियमित रूप से कर रहे थे। जब तक मनुष्य इस संसार में है वह प्रकृति के तीन गुणों गुण विसर्ग के वशीभूत रहता है। ऐसा नहीं है कि ऐश्वर्यवान होने के कारण प्रियव्रत भौतिक प्रभाव से मुक्त थे। इस संसार में अत्यंत निर्धन पुरुष तथा अत्यंत धनी पुरुष दोनों ही भौतिकता के वश में रहते हैं, क्योंकि वैभव तथा दरिद्रता दोनों ही प्रकृति के भौतिक गुणों से उद्भूत है। जैसा कि भगवद गीता 3:27 श्लोक में कहा गया है, प्रकृते क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः। हमारे द्वारा अपनाए गए प्रकृति के गुणों के अनुसार प्रकृति हमें भौतिक भोग की सुविधा प्रदान करती है। हरे कृष्णा, बहुत बड़ा तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातम् सहगन रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण।
इस प्रकार अपने पूर्ण पराक्रम तथा प्रभाव से भौतिक ऐश्वर्य का भोग करते हुए महाराज प्रियव्रत एक बार यह सोचने लगे कि यद्यपि मैं महामुनि नारद के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुका था और वास्तव में कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर था, किंतु मैं अब न जाने क्यों फिर से भौतिक कार्यों के संबंधन में फंस गया हूँ। इस प्रकार उनका मन अशांत हो उठा, वे विरक्त होकर बोलने लगे। ते ये जो संदर्भ या एक दिव्य लीला जो हम इस श्रीमद् भागवतम के स्कंद में पढ़ रहे हैं, महाराज प्रियव्रत का चरित्र, ये बहुत ही शिक्षाप्रद है हम सभी व्यक्तियों के लिए। जरूरी नहीं है कि हमारा जीवन इस प्रकार से हो, इसीलिए हमारे जीवन से इसकी मतलब बहुत महत्व रखता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि महाराज प्रियव्रत, उनका जीवन बड़ा विशेष है। बचपन से जब तक वो जवान हुए तब तक वो तपस्या कर रहे थे गंधमाधन पर्वत पर, और श्रील नारद मुनि जी के आदेशानुसार भगवान के भक्ति में संलग्न थे और विरक्त मार्ग पे थे। लेकिन महाराज प्रियव्रत के जो छोटे भाई है उत्तानपाद, उनके वंशज जो पूरे पृथ्वी का भार मतलब राज्य कारभार संभाल रहे थे, तो ध्रुव महाराज आए, फिर उसके बाद प्रचेताज आए, और फिर प्रचेताज जब चले गए तपस्या करने के लिए, तो कोई योग्य व्यक्ति थे नहीं जो राज्य कारभार देख सके, क्योंकि किसी ऐसे ही व्यक्ति को उठा के बिठाना ये परंपरा नहीं है वैदिक संस्कृति में। वैदिक संस्कृति हमेशा योग्य व्यक्ति को ही योग्य स्थान प्रदान करते हैं, क्योंकि जो भी स्थान व्यक्ति को दिया जाता है, फिर कोई भी हो, राजा हो या कोई भी किसी प्रकार का पद हो, जिम्मेदारी हो, वो जिम्मेदारी होने के वजह से सही व्यक्ति को देनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है जो हमें आध्यात्मिक ग्रंथों से प्राप्त होती है कि योग्य व्यक्ति को ही स्थान प्रदान करना चाहिए, नहीं तो अयोग्य व्यक्ति उस स्थान का दुरुपयोग करता है अपने स्वार्थ को या दूसरों को तकलीफ देने के लिए उसका उपयोग करता है। तो इसीलिए हमेशा योग्य व्यक्ति को ही स्थान देना चाहिए। तो उस समय कोई नहीं थे तो स्वयंभू मनु चिंता कर रहे थे, क्योंकि उनका भी समय आ गया था वानप्रस्थ लेने का, तो ये बहुत गंभीर समस्या है, कोई योग्य व्यक्ति होना चाहिए राजा बनने के लिए। तो उस गंभीर अवस्था को समझते हुए ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट होते हैं, आते हैं इस विचार से कि जो प्रियव्रत है जो जंगल में जाके तपस्या कर रहे हैं आत्म साक्षात्कार के विधि में संलग्न है, उन्हें वापस फिर से राज्य करने के लिए बुलाया जाए। सो ये विचार मन में रखते हुए वो आते हैं, और जब आते हैं तो उस समय नारद मुनि होते हैं और महाराज प्रियव्रत होते हैं गंधमादन पर्वत पर, जो और फिर वो कथन बोलने लगते हैं कि अभी समय की ज़रूरत है कि कोई योग्य व्यक्ति जिम्मेदारी स्वीकार करे, तो आप फिर से राजा बनिए। और उनकी कोई इच्छा नहीं थी प्रियव्रत महाराज की, वो तो पूरी तरह नारद मुनि की कृपा से विरक्त हो चुके थे, लेकिन क्योंकि ये स्वयं भगवान का आदेश था तो ब्रह्मा जी उस आदेश को सुनाने के लिए स्वयं आए थे, तो इतने महान पुरुष की जब आज्ञा होती है तो उसे मना करना ये भक्ति का लक्षण नहीं है। तो ये समझते हुए और नारद मुनि भी इस बात को भलीभांति समझे कि ये भगवान की इच्छा है, तो इसीलिए उन्होंने प्रियव्रत महाराज को राजा बनने के लिए कहा और फिर वो राजा बने। और जानते हैं जब कोई व्यक्ति राजा बनता है तो सुख सुविधा सब कुछ उसके पास होती है, तो स्वाभाविक रूप से लंबे समय तक जब कोई व्यक्ति सुख सुविधा में रहता है तो क्योंकि इस भौतिक जगत में तीन गुणों का प्रभाव होता है हर समय पे, इसकी वजह से व्यक्ति कई बार दिव्य स्तर से च्युत होकर भौतिक स्तर पे आ जाता है। और वही बात प्रियव्रत महाराज के साथ यहाँ पे हुई है और बहुत हजारों वर्ष तक उन्होंने राज्य किया, राजभोग लिया, उनकी पत्नी थी, बच्चे थे, सब कुछ ऐश्वर्य था। लेकिन ये बात आज का जो विचार प्रकट कर रहे हैं प्रियव्रत महाराज, वो एक तरह से अपने आप को कोस रहे हैं, क्योंकि मैं अब न जाने क्यों फिर से भौतिक कार्यों के बंधन में फंस गया हूं। ऐसा नहीं कि प्रियव्रत महाराज को पता नहीं है कि वो क्यों बंधन में फंसे हैं। साक्षात ब्रह्मा जी स्वयं आए थे आदेश देने के लिए कि तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर आप इस राज्य का कारभार, राज्य को संभालो, सबको सही दिशा दिखाओ, आगे जीवन में कैसे बढ़ना है। तो उनके आदेश के अनुसार ही वो तो बने थे, लेकिन यहां फिर भी वो कोस रहे न जाने क्यों। मतलब वो जिम्मेदारी ले रहे हैं कि मुझे आज्ञा दी गई थी राज संभालने की, गृहस्थ बनने की, तो उस आज्ञा को मैं पालन कर रहा हूं और एक सेवा के रूप में मुझे ये चीज करनी है। तो ये जो भाव है, ये भाव कहीं तो समय के अनुसार ढल गया, कहीं लिप्त हो गया या वो अप्रकट हो गया उनके जीवन के निर्वाह में, और इस बात का दुख यहाँ पे प्रकट कर रहे हो। और ये जो विचार आया है, ये किसकी वजह से विचार आया है? कोई व्यक्ति कहेगा मन में तो हजारों विचार आते रहते हैं, कभी आ गया होगा। ऐसा नहीं है कि अचानक से ये विचार उनके मन में आया है, ना। ये जो विचार उनके मन में आया है वो नारद मुनि और शिव भगवान की कृपा से आया हुआ है, क्योंकि जो परिवर्तन का विचार होता है वो कृपा से ही आता है। कोई व्यक्ति सोचेगा नहीं नहीं मैं तो बड़ा बुद्धिमान हूं, ग्रंथों का अध्ययन करता हूं, तो ग्रंथों का अध्ययन करने से मेरी बुद्धि से मैंने परिवर्तन का विचार लाया है। ऐसा यदि कोई व्यक्ति सोचता है तो बहुत बड़े भ्रम में है, उसका मिथ्या अहंकार उसको नचा रहा है, कह रहा है कि तुम बहुत बड़े हो, ना। क्योंकि शास्त्रों में आप प्रभुपाद जी कितनी जगह पे उदाहरण देते हैं कि बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े विद्वान, बुद्धिमान, जो शास्त्रों में बहुत प्रगतिशील है, जो शास्त्रों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उन लोगों का भी पतन होते हुए, जो आध्यात्मिक मार्ग में चलते हैं और पतन होता है, इसके उदाहरण प्रभुपाद जी हमें कितने बताते हैं। जब हरिदास ठाकुर और विश्वामित्र मुनि का तुलना प्रभुपाद जी गीता के तात्पर्यों में बताते हैं हमें कि विश्वामित्र मुनि बड़े वैरागी हैं, उनकी तपस्या यदि कोई सोचे भी करने के लिए नहीं कर सकता। पूरे गर्मी के समय मई जून में आग चारों तरफ आग लगा के उसके बीच में बैठ के कोई व्यक्ति ध्यान करता है बिना विचलन के, ये संभव नहीं है। अभी के वातावरण में बरसात आती है, कभी धूप आती है, तो सब जगह ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, पानी की मात्रा हवा में वातावरण में ज़्यादा है, तो इसके वजह से बहुत पसीने आते हैं हमको। तो पसीना जब आता है तो हमें कितना अनकंफर्टेबल फील होता है, कितना मुश्किल लगता है, लगता है कहाँ फैन है उसके नीचे जाके बैठूँ, या कहाँ एसी है उसके पास जाके बैठूँ, ताकि ये गर्मी जो लग रही है या पसीना आ रहा है उससे मैं छुटकारा प्राप्त करूँ। तो थोड़ा भी विचलन यदि कुछ होता है तो हमें बहुत मुश्किल हो जाती है, तो वो तपस्या तो सोच ही नहीं सकते हम। ठंडी के समय गंगोत्री में जाके वहाँ पे गले तक पानी में रहना और तपस्या करना, छू नहीं सकते उस पानी को, इतना ठंडा, और वो भी सर्दी के समय, तो बर्फ़ होगा, बर्फ़ से भी नीचे का तापमान होगा, ऊपर बर्फ़ होगा और उसको तोड़ेंगे और नीचे पानी में जाएंगे तो बिलो माइनस होगा, माइनस टेम्परेचर होगा उसमें पानी का। ऐसे पानी में रह के ध्यान करना, एकाग्र मन करना संभव नहीं है। इतनी सारी सुविधा के बाद भी हम मन को एकत्रित नहीं कर सकते, तो सुविधा ना हो, विपरीत परिस्थिति हो और मन को एकाग्र करना है, कितना बड़ा मुश्किल है। तो हमारी अवस्था ही नहीं, हम सोच ही नहीं सकते ऐसे एक तपस्या। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी पतन हो जाता है, क्योंकि ये मन और जो इंद्रिया है ये बड़ी शक्तिशाली होती है, बहुत शक्तिशाली। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथ ही बलवद्रडम, जब अर्जुन प्रश्न विचारते हो कहते हैं बलवद्रडम, बहुत बलवान है, बहुत शक्तिशाली है। ऐसे शक्तिशाली को रोकना आसान बात नहीं है। अर्जुन कहते हैं मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं अपने धनुष बाण से वेगवान चलने वाली हवा को रोक सकता हूं, लेकिन जो मन है उसको मैं नहीं रोक सकता। अब अर्जुन जैसा व्यक्ति, उसको उसकी शक्ति उससे पता है, वो क्या कर सकता है। हमारी तो क्या शक्ति है, कुछ भी नहीं है शक्ति किसी को नहीं रोक सकते हम, तुच्छ है, इनसिग्निफिकेंट है हम एकदम। तो कितना बड़ा चैलेंज है, सो देखिए हमारे सामने ये जो मन और इंद्रिया है हमारी, इनको नियंत्रित करके भगवान के चरणों में या भगवान की सेवा में संलग्न करना बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी समस्या या प्रश्न है हमारे सबके सामने। तो मन में ये जो विचार आ रहा है प्रियव्रत महाराज के, ये जो भावना प्रकट हो रही है, जो स्वयं को कोस रहे हैं, अगले श्लोक में देखेंगे आप, राजा ने अपनी भर्सना की, वो खुद को भर्सना कर रहे, ओह इंद्रिय भोग के कारण कितना धिक्कार जाने योग्य हो गया हूं, मतलब मेरा तिरस्कार करने लायक मैं बन गया हूं, ऐसी मेरी अवस्था है। अपनी पत्नी के हाथों में नाचने वाला बंदर बन गया हूं ऐसा वो बोल रहे। भौतिक सुख के अंधकूप में मैं गिर गया हूं, वो स्वयं का धिक्कार कर रहे हैं। ये जो विचार है, ये जो भावना है, ये हर किसी के हृदय में नहीं आती। जिसके ऊपर विशेष कृपा है भगवान और भगवान के महान भक्तों की, उसी के मन में ऐसा भाव आता है। नहीं तो हम सब जानते हैं हम कितने पतित हैं, कोई हमें दूसरा व्यक्ति आके प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि हम कितने पतित हैं, हमारे अंदर कितनी भौतिक इच्छाएं हैं, कितने हम इंद्र तृप्ति में लीन हैं। लेकिन ये जो वैराग्य की या अनासक्त की जो इच्छा है, ये बहुत बड़ी कृपा है जो भगवान और भगवान के भक्तों के माध्यम से हमारे जीवन में आती है। जिस व्यक्ति के जीवन में वैराग्य की ये इच्छा है, या भगवान के भक्ति में संलग्न हमेशा हमेशा संलग्न होने की इच्छा है, ये इच्छा ये बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ी संपत्ति है, बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि यही इच्छा व्यक्ति को आगे जाकर भगवान के चरणों तक पहुंचाएगी। भगवान के महान भक्त बताते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, ऐसी कौन सी योग्यता है जिससे व्यक्ति भगवान के चरणों को प्राप्त कर सकता है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, भगवान के चरणों को प्राप्त करने की इच्छा ही वो योग्यता है भगवान के चरणों को प्राप्त करने के लिए। तो ये जो इच्छा है ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, इसीलिए इस इच्छा को हमें कभी अपने आप से दूर होने नहीं देना चाहिए। इस इच्छा को हमें पकड़ के उसको हर दिन प्रकट करना चाहिए। भगवान के जब हम दर्शन लेते हैं तो भगवान से, भगवान हमारे सामने प्रकट होते हैं, अपनी सेवाओं को हम उनको अर्पण कर सके और हमारी जो चैलेंजेस यानी हमारे सामने जो तकलीफ नहीं बोल सकते लेकिन जो क्या बोलेंगे चैलेंज को, हाँ चुनौती जो है, उस चुनौती को हमें भगवान के सामने प्रकट करना है कि भगवान मेरे सामने ये चुनौती है, मैं इसको कैसे पार कर सकता हूँ, क्योंकि इसको जब तक मैं पार नहीं करूँगा तब तक मैं आपका शुद्ध भक्त नहीं बन पाऊँगा। तो कृपया मुझे आपकी कृपा दीजिए, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए ताकि इस चुनौती को मैं पार कर सकूं। और हम सबको पता है हमारी अपनी खुद की चुनौतियां क्या है। यदि हमें पता नहीं है तो भगवान को यदि हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान मैं अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता, मेरी आगे मेरी अनर्थों को मैं समझ नहीं सकता, मेरे अहंकार को मैं पढ़ नहीं पाता हूं, आप कृपया मुझे मदद कीजिए, वो आंखें दीजिए जिससे मैं उसे देख सकूं पढ़ सकूं, तो भगवान वो भी करेंगे, हमें आंखें भी देंगे, हमें पढ़ा लिखा भी बना देंगे जिससे हम देख सके और उस चुनौतियों से हम पार कैसे कर सके, उसके लिए भी भगवान हमें मार्गदर्शन देंगे अपने भक्तों के माध्यम से, हमें उस दिशा में भी ले जाएंगे कि कैसे हम उन चुनौतियों को पार करके भगवान के एक शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना हमें बहुत जरूरी है और भगवान के चरण कमलों में भगवान के प्रिय भक्त होते हैं, तो इसलिए भगवान के प्रिय भक्तों का भी शरण लेना हमें बहुत जरूरी है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्यते कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। इस श्लोक में बताया गया है कि गुरु और कृष्ण इनके ऊपर हमें नितांत श्रद्धा होनी चाहिए और उस श्रद्धा से हम उनके अनुसार जीवन जीते हैं, उनके आदेशों को अनुसार जीते हैं तो प्रकाशन्ते महात्मनः हो जाता है, मतलब हम दिव्य स्तर पे आ जाते हैं, हम भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो इसीलिए ये जो सबसे आसान तरीका है भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने का, मन और इंद्रियों को नियंत्रण में लाने का, इससे आसान मार्ग और कोई नहीं है। व्यक्ति सोचेगा, जो ज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं, अरे मन तो बड़ा प्रभावशाली है, शक्तिशाली है, बलवान है, इससे हमें मुक्त होना है तो क्या करना है, सब कार्यों को त्याग कर दो, छोड़ दो और सिर्फ वेद अध्ययन करो, क्योंकि कर्म करेंगे बंधन आएगा, कर्म ना करो और अध्ययन करो, ज्ञान के मार्ग पे लग के बुद्धि के माध्यम से परे जाने का प्रयास करो, ऐसा वो प्रयत्न करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण जब अर्जुन को उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं, तीसरे अध्याय के आखिरी जो सेक्शन है उसमें, तो उसमें ये नहीं बताते कि आपको सारे कर्मों को छोड़ना है, ना वो कहते हैं कि सब कुछ जो हमें दिया गया है उसको हमें भगवान की सेवा में लगाना है। निर्बंधे कृष्ण संबंधे वैराग्यम उच्चते, इहायस्से हरेर्दास्से कर्मणा मनसा गिरा निखिलाश्वपि अवस्थातु जीवन मुक्त स उच्चते। कि कर्म, मन, वाचा सबसे हमें भगवान के साथ जुड़े हुए कर्मों में लगना है। तो ये गुरु और कृष्ण हमें इस मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन देते हैं कि हर कुछ जो कुछ हम अपना जीवन जी रहे हैं वो कर्मणा मनसा गिरा तीनों प्रकार से, तीनों रूप से हम भगवान के लिए करें। इससे ये बल शक्तिशाली जो मन है वो नियंत्रण में आ जाएगा। जैसे कोई खूंखार जानवर होता है उसको भूखा रखते हैं पहले, क्योंकि उसको ट्रेनिंग देनी है। तो भूखा रहने के बाद पहले तो बहुत गुस्सा करता है, आवाज़ करता है, लात मारेगा, सब कुछ करेगा वो। लेकिन जैसे जैसे उसकी शरीर की शक्ति क्षीण होने लगेगी, क्योंकि पेट में तो कुछ जा नहीं रहा है, क्षीण होने लगेगी, तो अपने आप उसका आवाज़ गुर्राना गुर्र गुर्र वो कम हो जाएगा, हाथ पाँव हिलाना कम हो जाएगा, एक जगह पे बैठा रहेगा वो। कोई आके कुछ उसको ऐसा भी करेगा तो कुछ नहीं करेगा वो, क्योंकि खाना ही नहीं दिया है उसको, वो पूरी तरह ये हो गया है। और फिर उसको ट्रेनिंग दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। तो इसीलिए गीता में भगवान बताते हैं कि इंद्रियों को हम ऐसे फास्टिंग कराएंगे तो जी कैसे सकेंगे बताइए। आँखों को कुछ देखने के मना कर देंगे, आंखें बंद कर देंगे, कैसे जिएंगे? जीवा है, जीवा को बंद कर देंगे, कैसे जी पाएंगे? तो वो तरीका नहीं है। जैसे एक प्राणी को सिखाया जाता है एक तरीके से, वैसे हम इंद्रियों को शट डाउन करके, उनको बंद करके उसके ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे, नहीं हो पाएगा। क्योंकि इंद्रियों को हम कितने समय तक भूखा रखेंगे? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रशिक्षण नहीं देंगे। हम प्रशिक्षण देंगे, और भगवान की जो भक्ति की पद्धति है, जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें प्रोग्राम दिया हुआ है, वो प्रशिक्षण है। वो हमारे सारे इंद्रियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं भगवान की सेवा में संलग्न होने के लिए। ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं तो हम भक्ति कर रहे हैं, हम भक्ति में स्थित है। तो प्रभुपाद जी और सारी जो परंपरा है हमारी, उन्होंने बड़े बुद्धिमानी से सरल तरीका दिया है हमको। हमें जंगल में जाने की या बड़े बड़े यज्ञ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हरेर नामेव केवलम, सिर्फ हरि नाम के उच्चारण से और भगवान की भक्ति का जो पद्धति हमें मिली है उसमें अपने इंद्रियों को संलग्न करने से हम परम भक्त बन सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है प्रिय महाराज के इस जीवन से हम बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त करते हैं। क्योंकि हालांकि आज्ञा है और आज्ञा से हम कोई भौतिक कार्यों में संलग्न होते हैं, तो हमें सतर्कता से उस कार्यों में संलग्न होना है। यदि आप इस अध्याय के तात्पर्यों को पढ़ेंगे, जैसे पांचवा श्लोक है उसका तात्पर्य है, छठा श्लोक है उसका तात्पर्य है, प्रभुपाद जी बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे हमें समझाते हैं कि कोई भी कार्य जब हम स्वीकार करते हैं भक्ति में आने के बाद, तो हमें सावधानी से उस कार्य को भगवान की सेवा के लिए ही उपयोग में लाना चाहिए। हमारे पास घर है तो हमें उस घर को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, मतलब वहाँ पे भगवान को बुला के ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि भगवान ये घर आपका है, मेरा नहीं है, मैं तो यहाँ एक तुच्छ सेवक हूँ, आपकी सेवा करने के लिए मैं इसी घर में निवास कर रहा हूँ। ये भाव बहुत जरूरी है, ना कि ये भाव कि ये घर मेरा है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। ऐसा सोचेंगे तो फिर हमें प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी लेते रहना पड़ेगा जन्म जन्म, निकल नहीं पाएंगे। तो जो कुछ है निर्बंध है, कृष्ण संबंध है, सब कुछ कृष्ण से संबंधित जोड़ते हुए स्वीकार करना है। क्योंकि कहीं पे भी शास्त्रों में ऐसा नहीं बताया गया है, क्योंकि ये जो चार वर्ण और आश्रम है, भगवान ने इसकी सृष्टि क्यों की है, क्योंकि हरेक के प्रकृति के अनुसार व्यक्ति चार वर्णों में चार आश्रमों में फिट होता है। तो हर आश्रम और हर वर्ण में व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति को सन्यासी ही बनना चाहिए और ब्राह्मण ही होना चाहिए भगवान का शुद्ध भक्त बनने के लिए, ना, ऐसा जरूरी नहीं है। व्यक्ति शूद्र क्यों ना हो और गृहस्थ क्यों ना हो, वो शुद्ध भक्त बन सकता है भगवान का। और चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में हम देखते हैं कितने भगवान के महान महान भक्त है। शिवानंद सेन गृहस्थ है, उनके बेटे का जन्म होने के पहले ही चैतन्य महाप्रभु ने उस बेटे को बच्चे को नामकरण कर दिया। सोचिए, जन्म अभी हुआ भी नहीं, उसके पहले ही नाम दे दिया। तो महत्वपूर्ण क्या है कि व्यक्ति कृष्ण संबंध को कितना जागृत रखता है अपने जीवन में, कितना भगवान से जुड़ा हुआ अपने आप को देखता है, वो महत्वपूर्ण है। यदि हम भगवान से विलग होंगे तो माया तो है ही पकड़ने के लिए। जहान कृष्ण तहान नहीं मायार अधिकार, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। जहां माया आ गई वहां कृष्ण नहीं है, और जहां कृष्ण है वहां माया नहीं है। तो इसीलिए कृष्ण संबंध को जोड़ने के लिए बहुत मेहनत करने की हमें जरूरत है। प्रियव्रत महाराज वही कर रहे हैं। ये जो विचार उनके मन में आया है वो इसी वजह से आया है क्योंकि उन्होंने पूरा जो जीवन, मतलब जब गृहस्थ बन गए उसके बाद का पूरा जीवन है, वो नारद मुनि के आदेशानुसार जी रहे थे। उनका आदेश है, ब्रह्मा जी का आदेश है, भगवान का आदेश है, इसलिए मैं राज्य कारबार कर रहा हूं, इसलिए मैं घर गृहस्थी कर रहा हूं। तो उस भावना को रखा है उन्होंने मन में, भले ही करते करते वो उनके वो भावना थोड़ी शिथिल हो गई या कम हो गई, जिसके वजह से आज वो अपने आप को कोस रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो उस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, इसीलिए आज ये अवस्था उनके जीवन में आई है कि वो विचार कर रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, कितना समय मैंने दिया है। और ऐसा नहीं कि इमैच्योरली, मतलब अपने कर्तव्य को पूरा करने के पहले ही वो ये विचार कर रहे हैं, नहीं, उन्होंने अपना पूरा कर्तव्य कर लिया है, अब उनके मन में ये विचार आ रहा है कि मैं अब क्यों फंसा हुआ हूँ, जरूरत नहीं है मुझे ये सब करने की, मैं हैंड ओवर दूसरे को ये जिम्मेदारी दे के निकल जाता हूं। ये भाव आ गया है उनके मन में, ये विचार आ गया। तो इसीलिए जो भी कार्य को हम स्वीकार करते हैं उसे कृष्ण संबंध में स्वीकार करना बहुत जरूरी है। यदि ऐसा नहीं करते तो हम ऑलरेडी पतित है, फिर पतित और क्या होना है, क्योंकि शुरुआत ही हमने पतित की तरह की है, किसी चीज को अपने लिए स्वीकार किया है, कृष्ण संबंध में स्वीकार नहीं किया, वही पतन हो गया। और फिर उसके बाद आगे जो होने वाला है वो तो पतन की और श्रृंखला है, आगे बढ़ते जाएगा वो पतन। तो इसीलिए पहले स्तर पे, पहले स्टेप पे ही कोई चीज हम स्वीकार करते हैं तो कृष्ण के संबंध में स्वीकार करना है, तो बहुत जरूरी बात है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या है, प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा तात्पर्य दिया और इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें वो बढ़ाते जा रहे, सिखाते जा रहे हमें, लेकिन शायद प्रभुपाद जी उन बातों को दोहराते रहते हैं। प्रभुपाद जी का ये बहुत करुणा का भाव है कि उसी बात को वो काफ़ी समय तक दोहराते रहते हैं जब तक हमारे कानों के माध्यम से हमारे हृदय तक पहुंचती नहीं वो बात। प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं उस चीज़ को बोलेंगे फिर से। अगला श्लोक जो है उसमें फिर से वो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपने आप को कोसने के लिए, तो उस तात्पर्य में भी देखेंगे तो प्रभुपाद जी फिर से हमें वही बताएंगे। क्योंकि हट्टी जो बच्चे होते हैं ना वो हट्टी होते हैं, बहुत मानते नहीं हैं, तो बार बार बोलना पड़ता है तब जाके वो 100% होगा तो उससे 10-20-30% वो स्वीकार करेगा, क्योंकि बार बार बताया जा रहा है, जोर दे के बताया जा रहा है। तो प्रभुपाद जी इसी प्रकार से जानते हैं कि हम बहुत हट्टी हैं, अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं हम, तो इसीलिए प्रभुपाद जी करुणावश हमें बार बार वही बताएंगे, समझाएंगे कि ये हट जो है, भगवान से अलग रहने का हट जो है वो छोड़ दो और मुझसे जुड़े रहो, मुझसे जुड़ा हुआ कार्य में ही अपना जीवन समझो। और भगवान क्या करते हैं, जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके हृदय में भगवान इतना आनंद प्रदान करते हैं, इतना सुख प्रदान करते हैं कि व्यक्ति फिर गरीब से गरीब भी होगा तो भी सबसे खुश रहेगा, और अमीर होगा तो वो तो अलग बात है कि उसके पास सुविधा है वगैरह वगैरह, लेकिन हृदय से वो जरूर बहुत खुश होगा। तो ये जो हृदय की प्रसन्नता है वो उसी भक्त को मिलती है और किसी को नहीं। भौतिक सुविधा बहुत हो लेकिन हम देखते हैं जिसके पास बहुत भौतिक सुविधा है उसके चेहरे बताते हैं वो कितना अंदर से दुखी है, अंदर से कष्ट है उसे दिखाते चेहरे व्यक्ति के, लेकिन जो प्रसन्न है हृदय में खुश है उसका चेहरा तुरंत दिखाएगा, उसके चेहरे में वो संतुष्टता दिखाई देगी। उसे एक छोटी सी छोटा सा भी कुछ मिले प्रसाद या कुछ भी वो उसमें बहुत हर्ष मानेगा, बहुत आनंद मानेगा। ऐसा नहीं कि मुझे वो राजभोग का केक ही नहीं मिला इसलिए मैं झगड़ा कर रहा हूँ, ऐसा भाव नहीं रहेगा उसका। थोड़ा भी कुछ मिलेगा वो बहुत प्रसन्न होगा, खुश होगा। तो संतुष्टता ये लक्षण है भक्ति में प्रगतिशील व्यक्ति का, वो किसी भी अवस्था में संतुष्ट रहता है। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपितुल्यार्थ दर्शना, ये भाव होता है भगवान के जो संतुष्ट भक्त होते हैं, भगवान के भक्ति में स्थित भक्त होते हैं, कि वो हर अवस्था में खुश रहते हैं, क्योंकि हर अवस्था में वो जानते हैं कि मैं भगवान की कुछ ना कुछ तो सेवा कर ही सकता हूं। तो ये बहुत विशेष और सुंदर प्रकार की शिक्षा श्री प्रभुपाद जी हमें इस श्लोकों के और प्रियव्रत महाराज के चरित्र से हमें सिखा रहे हैं, जो हमें अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है और वो भक्त बनने की ज़रूरत है जो हमेशा भगवान की भक्ति में संबंधित है, स्थित है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, शील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, इताय गौर प्रेमनंदे। हरि हरि बोल।